पिछले अध्याय में आपने देखा कि सानवी आर्यन से मिलने जाती है, शिवरिया से मिलता है और आर्यन और सानवी कॉफी पीते हैं। इस अध्याय में जोया को अयान के साथ जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां परिवार में सारा की रुखसती पर चर्चा होती है और आर्यन को विक्रांत के खिलाफ सबूत मिलते हैं। इंदर सानवी को क्लब के मेन्यू में मदद करने के लिए कहता है और फिर आलिया के बारे में बात करने की कोशिश करता है। सारा जोया से उसके साथ रहने के लिए कहती है। नाउ नेक्स्ट, कृति जो आर्यन के ऑफिस से मीटिंग रूम से बाहर आ गई थी अपनी सीट पर आती है, तभी उनके फ़ोन पर जेसिका का कॉल आता है। पहली बार बेल बजती रहती है, वो नहीं उठाती क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, मगर उसका फ़ोन फिर दोबारा आने लगता है। इस बार वो फ़ोन उठा लेती है। मुझे तुमसे मिलना है, जेसिका ने उससे कहा, मगर इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ, मैं कैसे मिलने आ सकती हूँ, कृति ने साफ साफ मना किया। लंच टाइम होने वाला है, मैं ऑफिस की बिल्डिंग के पीछे तुमसे मिलती हूँ, याद रखना तुम्हें मिलने आना पड़ेगा वरना, कहते हुए जेसिका ने उसे धमकाया। ठीक है, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, कृति ने समय देखते हुए कहा। वो बिल्डिंग से निकलकर ऑफिस की बिल्डिंग के पीछे जाती है। ऑफिस की वो पिछली साइड ऐसी थी कि वहां ज्यादा आना जाना नहीं था। जेसिका वहां अपनी गाड़ी से उतरकर पहुंचती है। आपने मुझे किस लिए बुलाया, कृति ने पूछा। जल्दी बताओ, मुझे काम है, मुझे वापस जाना है। कल कोर्ट की तारीख है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम ऑफिस में काम करने लगी हो तो ऑफिस में क्या हो रहा है मुझे खबर देती रहो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी, जेसिका ने कहा। खबरें तो बहुत है मेरे पास, मगर मेरा भी तो फायदा होना चाहिए, कृति ने कहा। पहले खबर बताओगी उसे हिसाब से तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, जेसिका कहने लगी। तो खबर यह है कि आर्यन राजवंश आपके हस्बैंड पर नजर रखवा रहा है, शायद आपका पति किसी गलत कामों में शामिल है, कृति ने कहा। असल में कृति उससे पैसे नहीं चाहती थी, वो उसे सिर्फ ये बता रही थी कि उसका पति गलत काम करता है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। सिर्फ इतनी सी खबर है कि वो सचमुच मेरे पति पर किसी आदमी से नजर रखवा रहा है, जेसिका ने कहा। कोई बात नहीं, आगे जो भी हो जल्दी ही बता देना, कृति वहां से चली आती है। जेसिका सीधे विक्रांत के ऑफिस जाती है। जैसे ही उसने ऑफिस में प्रवेश किया, विक्रांत ने कहा, आओ मेरी जान। फिर उसने जेसिका को देखकर पूछा, तुम परेशान लग रही हो, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, जेसिका कहने लगी। क्यों नहीं डार्लिंग, पूछने की क्या बात है, हुक्म करो, विक्रांत ने सहजता से जवाब दिया। तुम कोई गलत काम करते हो क्या जिसके बारे में मैं नहीं जानती, जेसिका ने सवाल किया। दरअसल कृति की बातों से उसे थोड़ी घबराहट हुई थी और वो विक्रांत से इसकी पुष्टि कन्फर्म करना चाहता था। एक बार तो विक्रांत घबरा जाता है क्योंकि उसे ऐसे अचानक सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर वो जल्दी ही खुद को संभाल कर कहता है, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें किसी ने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा है, कृति ने कहा है कि आर्यन तुम पर नजर रखवा रहा है, तुम किसी गलत काम में शामिल हो, विक्रांत बोला। तुम किसकी बातों पर भरोसा करती हो, छोड़ो तुम, मुझे थकी लग रही हो, तुम्हें घर जाना चाहिए और जय भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, कल केस की तारीख है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, वो प्यार से समझा बुझाकर जेसिका को घर भेज देता है। जेसिका वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद विक्रांत तुरंत किसी को फोन करता है। उसने निर्देश दिया, वहां पर जो हमारा स्माइलिंग माल है उसे जल्द से जल्द हटवा दो, हमारे गोदाम पर रेट पड़ सकती है। इस तरह विक्रांत उस गोदाम में जो भी सामान था उसे दूसरी जगह शिफ्ट करवा देता है। इसी समय आर्यन के ऑफिस में फोन आता है कि हमने विक्रांत के गोदाम पर पुलिस से रेट करवाई थी, मगर ना तो वो खुद मिला और ना ही उसका सामान, इसलिए ये रेट बेकार हो गई। ये सुनकर आर्यन बेहद परेशान हो जाता है। उसका प्लान था कि अगर सचमुच ऐसा होता तो उसे बहुत आसानी से जय की कस्टडी मिल जाती, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, आर्यन ने कहा। तुमने तो कहा था खबर पक्की है। बिल्कुल, मैंने पता करवाया था, ये खबर बिल्कुल पक्की थी, मगर जैसे उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो किसी से, क्या ऐसा हो सकता है, उसे सामने वाले आदमी ने आर्यन से पूछा। मेरे ऑफिस से कोई खबर बाहर नहीं गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आर्यन उनसे कहने लगा। उधर विक्रांत को भी अपने ऑफिस में फोन आता है। सामने से कहा गया, आपकी जानकारी सही थी, हमने सारा सामान हटा दिया था, पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, पुलिस आई उसने पूरे गोदाम की तलाशी मगर एक भी चीज नहीं मिली उन्हें, विक्रांत ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे हर खबर देते रहना और तुम सभी लोग साइट पर ही रहो, किसी भी हालत में पुलिस की नजरों में नहीं आना चाहिए। विक्रांत ये समझ गया कि आर्यन का प्लान फेल हो गया है और इस बात से वो बेहद खुश था। चाहे जो भी था, विक्रांत बिजनेस में तो नहीं मगर क्राइम की दुनिया का एक मजा हुआ खिलाड़ी था। शिव के जाने के बाद रिया बहुत परेशान हो गई थी। उसने सचमुच शिव को ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो अमीर है। अब उसे अपनी इस बेवकूफी पर पछतावा हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे खुद को अमीर दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, मगर जो होना था वो हो चुका था। अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके पास कोई काम नहीं था, जिस लड़के से वो सच में प्यार करती थी वो भी अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। रिया ने आलिया को फोन किया। क्लब आ जाओ, आलिया ने कहा। इंदर ने क्लब में कुछ नए बदलाव किए हैं, हम सब वही काम देख रहे हैं। रिया तुरंत क्लब पहुंच गई। आओ, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, आज रात क्लब का पूरा लुक बिल्कुल अलग होगा। सच में बहुत अच्छा लग रहा है, रिया ने चारों तरफ देखते हुए कहा और आलिया के पास जाकर बैठ गई। वो बहुत उदास थी। एक तो उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया था, दूसरा अब उसके पास कोई काम भी नहीं था। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो, इंदर ने पास आकर पूछा। बस ऐसे ही, रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आज एक इंटरव्यू था लेकिन बात नहीं बनी, थोड़ा परेशान हूँ। वो शिव मेहता वाली बात छुपा गई थी, इंदर ने कहा। मेरे क्लब में काम करोगी? मैं लेडीज के लिए एक अलग ड्रिंक काउंटर शुरू करने वाला हूँ, तुम उसे संभाल सकती हो। सचमुच, रिया की आंखों में चमक आ गई। वैसे भी उसने पहले कई पार्टियों में वेट्रेस का काम किया था, लेकिन इस बार तो उसे पूरे काउंटर की जिम्मेदारी मिलने वाली थी। रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मेरी इंटरव्यू नहीं लोगे? इंदर हंसते हुए बोला, देखो मुझे इन सब चीजों में फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उम्मीद है कि तुम मेरा काम अच्छे से संभाल लोगी। अयान ने जया के साथ लंच का प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन उसने उसे इसके बारे में बताया नहीं था। उसका यही प्लान था। आज उसने ऑफिस का कोई भी काम नहीं रखा था, मगर सारा की वजह से वो प्लान अधूरा रह गया। मन में बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप रह गया और अकेला ही ऑफिस चला गया। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचा, रिसेप्शन एरिया में एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। अयान बिना इधर उधर देखे सीधा अपने केबिन की ओर बढ़ने लगा। दरअसल वो रास्ते भर जोया के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे जोया की घबराहट, उसका शर्म से लाल पड़ता चेहरा सब याद आ रहा था। जो भी था, ये रिश्ता उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो भीतर से खुश था। कैसे हो अयान? किसी ने पीछे से आवाज दी। नेहा को देखकर अयान कुछ पल के लिए ठिठक गया। नेहा, तुम? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली। काफी वक्त हो गया अयान, सोचा मिल लूं। तुम्हारे शहर आई थी, तुम्हारा ऑफिस देखना था। अयान थोड़ा असहज हो गया, फिर बोला, हाँ चलो अंदर आओ। दोनों उसके केबिन में गए। नेहा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। काफी बदल गए हो तुम, और ये जगह भी, उसने धीमे से कहा, मेज पर रखी चीजें छूते हुए। अयान मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक झिझक थी।
वो जानता था कि कभी नेहा उसके बहुत करीब रही थी। दोनों का रिश्ता उस दौर में काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन फिर वक्त के साथ सब खत्म हो गया था। नेहा अब भी वैसी ही थी, आत्मविश्वासी, खुली सोच वाली और बेबाक। वो अयान की तरफ झुकते हुए बोली, बस तुम्हें देखकर पुरानी बातें याद आ गईं, नेहा बोली। उसकी निगाहें अब भी अयान पर थीं। अयान ने घड़ी की तरफ देखा। मुझे थोड़ी देर में मीटिंग है, उसने कहा, थोड़ा झूठ बोलते हुए। तुम चाहो तो शाम को मिल लेते हैं, अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अयान बस चुप रहा। नेहा बाहर निकल गई। वो कुर्सी पर बैठा कुछ पल यूं ही खाली निगाहों से दरवाजे को देखता रहा।